आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल 2025 पर बहस जारी है। ये बिल वक्फ इमलाक के इंतजाम और इंसराम में शफाफियत लाने, विरासती मकामात के तहफुज और समाजी फलाह बहबूद को फरोग देने के लिए है। सरकार का कहना है कि बिल का मकसद वक्फ बोर्ड को मजीद शमूलियत वाला बनाना है, जिसमें मुसलमानों के मुख्तलिफ तबकों और खवातीन की नुमाइंदगी हो। अपोजिशन ने इसे गुमराह करने वाला बिल करार दिया है। पार्लियामेंट ने इमिग्रेशन कानून को बेहतर करने और भारत में गैर मुल्कियों के दाखिले और उनके कयाम को मुंजबित करने से मुतालिक बिल को पास कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल से थाईलैंड और श्रीलंका के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। वो बैंकॉक में बिम्स्टेक सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज रात कई मुल्कों पर जवाबी इकदाम के तौर पर महसूलात का ऐलान करने वाले हैं और भारतीय मुक्केबाज जादूमणि सिंह मुक्केबाजी के आलमी कप के मर्दों के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की जानिब से तजवीज करदा वक्फ तरमीमी बिल 2025 पर लोकसभा में बहस जारी है। इस बिल का मकसद वक्फ इमलाक के बंदोबस्त को बेहतर बनाना, टेक्नोलॉजी पर मबनी इंतजाम को मुतारिफ कराना, पेचीदगियों का इजाला करना और शफाफियत को यकीनी बनाना है। अकलियत उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने बिल पेश करते हुए कहा कि मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का सलाह मशवरे का अमल भारतीय जमहूरियत की तारीख में पार्लिमानी पैनल की जानिब से की गई सबसे बड़ी मशक थी। उन्होंने कहा कि हुकूमत वक्फ बोर्डों को सबकी शमूलियत पर मबनी और सेकुलर बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि इस कानून का मुसलमानों के मजहबी तरीक़ेकार से कोई ताल्लुक नहीं है और ये सिर्फ वक्फ बोर्डों से मुतालिक इमलाक के लिए है। वजीर मौसूफ ने कहा कि ये बिल इम्कानात पर मबनी है और मजीद कहा कि ये कानून किसी की जायदाद छीनने के लिए नहीं लाया जा रहा है।
ये कानून प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। ये किसी का जमीन छीनने का कानून नहीं है। ये किसी का राइट किसी का हनन करके उसका प्रॉपर्टी को हड़पने का नहीं है। राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसका तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन जो डिस्प्यूटेड है, जो कोर्ट में पेंडिंग है, उसको हम यह कानून बना के कैसे हटा सकते हैं।
जनाब रिजिजू ने कहा कि मौजूदा बिल के मुताबिक वक्फ बोर्डों में मुसलमानों के मुख्तलिफ तबकों और खवातीन के नुमाइंदे होंगे। वजीर मौसूफ ने अपोजिशन पर इस बिल के बारे में लोगों को गुमराह करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि मौजूदा कानून में कुछ जाब्तों को मुल्क में किसी भी जमीन को वक्फ जायदाद करार देने के लिए गलत तौर पर इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि 2013 में यूपीए के दौरे इकतदार में वक्फ कानून में तरामीम की गई जिससे दीगर कवानीन मुतासिर हुए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौरे इक्तदार में कौमी राजधानी में कुल 123 इमलाक को दिल्ली वक्फ बोर्ड को मुंतकिल किया गया। वजीर मौसूफ ने सवाल किया कि भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ इमलाक हैं, लेकिन फिर भी भारतीय मुसलमान क्यों गरीब हैं?
वक्फ प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है सर, तो इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। सिर्फ हमारा देश में ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। तो फिर ये क्यों है, 60 साल तक आप सरकार में रहे हैं, हमारे देश में मुसलमान इतना गरीब क्यों है? जब दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हमारे देश में है, तो हमारे गरीब मुसलमानों का पढ़ाई के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, स्किलिंग के लिए, इनकम जनरेशन के लिए क्यों काम नहीं हुआ आज तक, बताइए।
बीजेपी के रहनुमा अनुराग सिंह ठाकुर ने बिल की हिमायत करने के लिए मुख्तलिफ तंजीमों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि ये वक्त वक्त में तरमीम करने का है, क्योंकि ये ज्यादती और बदउनवानी की बुनियाद बन गया है।
ये विधेयक नहीं, एक उम्मीद है। इस उम्मीद में एम्पावरमेंट है, एफिशिएंसी है, डेवलपमेंट है, और कहीं ना कहीं इसी को देखकर आज जहां देश भर के लोग इसके समर्थन में है, चर्च से लेकर मुस्लिम की अन्य सभाओं ने इसका समर्थन किया है, उसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं।
इससे कबल बहस में शिरकत करते हुए कांग्रेस के गौरव गोगोई ने इल्जाम लगाया कि इस बिल के जरिए हुकूमत आईन में तब्दीली करना, अकलियतों को बदनाम करना और भारतीय समाज में तफरीक पैदा करना चाहती है।
ये बिल आज इस संविधान के इस जो मूल जो ढांचा है उस पर आक्रमण है और इनकी जो पूरा जो भाषण था वो हमारे संविधान के इस मौलिक अधिकार पर, हमारे संघीय ढांचे पर एक आक्रमण था।
समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने इल्जाम लगाया कि इस बिल का मकसद ठीक नहीं है और ये बीजेपी की जानिब से अपने वोट को कंट्रोल करने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि इस कानून से मुल्क की सेकुलर छवि को जक पहुंचेगी। डीएमके के ए राजा ने इस कानून को गैर आईनी और अकलियतों के खिलाफ करार दिया। बहस में हिस्सा लेते हुए बीजेपी के रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये बिल वक्फ बोर्डों में खवातीन की लाजमी तौर पर शमूलियत की तजवीज करता है, जिसका मकसद वक्फ इमला के बंदोबस्त में शफाफियत और सिन्फी इंसाफ में इजाफा करना है। टीडीपी के कृष्णा प्रसाद तेनेती ने बिल की हिमायत की। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के जरिए तजवीज की गई तरमीमात को बिल में शामिल किया गया है। जेडीयू के लीडर और मरकजी वजीर राजीव रंजन सिंह ने कहा कि ये कानून वक्फ इमलाक के इंतजाम इंसराम में शफाफियत लाएगा और उनके गलत इस्तेमाल की रोकथाम करेगा। बहस में हिस्सा लेते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि कोई भी गैर मुस्लिम वक्फ में नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि मजहबी इदारों के इंतजाम इंसराम में किसी भी गैर मुस्लिम को शामिल करने की कोई शिक नहीं है।
वक्फ में कोई गैर इस्लामिक सदस्य आएगा ही नहीं, ये स्पष्टता समझ लीजिए। न मुतवल्ली गैर इस्लामिक होगा, न वाकिफ गैर इस्लामिक होगा। जो धार्मिक संस्थाओं का संचालन करते हैं उसमें कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति रखने का प्रावधान किया भी नहीं है, हम करना भी नहीं चाहते हैं। मान लो
पंचकुला में हरियाणा उर्दू एकेडमी के साबिक डायरेक्टर और अदीब शम्स तबरेजी ने भी बिल की हिमायत की।
ये एक बहुत बड़ा कदम है, एक बहुत बड़ा काम भी है। पूरे हिंदुस्तान में तीसरे नंबर पर वक्फ जायदादें हैं, वक्फ का नाजायज इस्तेमाल हो रहा है, तो ऐसी सूरत तो बेहतर ही है कि गवर्नमेंट इस पर कार्रवाई कर ले और जो मुनासिब तरीका है, जो पूरी कौम के लिए और जिसमें हिंदुस्तान के ही आवाम शामिल है उनके फायदे के लिए ये काम हो, तो मैं समझता हूं कोई बहुत बुरी बात नहीं है।
बहस अभी जारी है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पार्लियामेंट ने इमिग्रेशन और गैर मुल्कियों से मुतालिक बिल 2025 पास कर दिया है। लोकसभा की मंजूरी के बाद राज्यसभा ने आज इसकी मंजूरी दी। ये बिल पुराने कानून को रद्द करते हुए इमिग्रेशन के कानून की जदीद कारी करेगा, पासपोर्ट वीजा और गैर मुल्कियों के रजिस्ट्रेशन के अमल को आसान करेगा। ऐवान में बिल पर एक बहस का जवाब देते हुए उमूर दाखिला के वजीर मुमलिकत नित्यानंद राय ने कहा कि ये कानून भारत आने वाले गैर मुल्कियों के रिकॉर्ड को बेहतर ढंग से मुंजबित करने में मदद करेगा। इससे पहले बहस की शुरुआत करते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने इल्जाम लगाया कि ये बिल गैर मुल्कियों के बुनियादी हकूक के खिलाफ वर्जी करता है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के मेंबरों ने बहस में हिस्सा लिया। कामकाज मुकम्मल होने के बाद ऐवान की कार्रवाई कल दिन में 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल से दो मुल्कों थाईलैंड और श्रीलंका के दौरे पर रहेंगे। वो बैंकॉक में बिम्स्टेक की छठी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के लिए थाईलैंड की वजीर आजम पेटोंगछान श्रीनवात्रा से बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा बाहमी तआवुन का जायजा लेंगे, इलाकाई मामलात पर तबादले ख्याल करेंगे और अहम मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। इस जुमे को होने वाली बिम्स्टेक की छठी सरबराह कॉन्फ्रेंस का मौजू है एक खुशहाल, लचकदार और खुला बिम्स्टेक। इस सरबराह कॉन्फ्रेंस में 2030 का बैंकॉक विजन इख्तियार किया जाएगा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
भारत और थाईलैंड के दरमियान तारीखी दो तरफा ताल्लुकात हैं और दोनों के तहजीबी, सकाफती और मजहबी रिश्ते भी हैं। थाईलैंड भारत का एक बहरी पड़ोसी, मशरकी मुल्कों से राबता बढ़ाने की पॉलिसी और भारत बहरुल काहिल के नजरिए के लिए एक अहम शराकत दार और बिम्स्टेक में इंतहाई अहम साझेदार है। दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत तकरीबन 15 अरब डॉलर की है। बिम्स्टेक में भारत की तवज्जो इदारे और सलाहियत साजी, सिक्योरिटी को मुस्तहकम करने और कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर मरकूज रहेगी। वजीर आजम का ये दौरा 2019 में उनके पिछले दौरे के बाद दो तरफा ताल्लुकात को मुस्बत सम्त देने का मौका फराहम करेगा। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं नरगिस सलीम।
थाईलैंड के बाद वजीर आजम मोदी श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिस्सा नायका की दावत पर श्रीलंका का 3 रोजा सरकारी दौरा करेंगे। जनाब मोदी श्रीलंका के सदर के साथ बातचीत में दो तरफा तआवुन का जायजा लेंगे और बाद में अनुराधापुरा जाएंगे, जहां वो भारत की माली मदद याफ्ता तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। भारत ने माली साल 2024-25 के दौरान 1,681 रेल इंजन तैयार करके अमेरिका और यूरोप को पीछे छोड़ दिया है। रेलवे की वजारत ने आज एक बयान में कहा कि माली साल 2023-24 में 1,472 रेल इंजन तैयार करने के मुकाबले ये 19% का इजाफा है। मुल्क में इंजन तैयार करने के मामले में ये अब तक की सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तैयारी है, जिसे रेलवे से मुतालिक बुनियादी ढांचे और सलाहियत में इजाफे की खातिर सभी यूनिटों की नुमाया कामयाबी की अक्कासी होती है। वजारत ने मजीद कहा है कि 2014 के बाद से 10 बरस में 9,168 रेल इंजन तैयार करके इस सिलसिले में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज रात उन मुख्तलिफ मुल्कों पर महसूल आयद करने का ऐलान करने वाले हैं जो अमरीकी साजो सामान पर ड्यूटी लगाते हैं। इस ऐलान के बाद ये बात साफ होगी कि ट्रंप इंतजामिया किन मुल्कों और शोबों को निशाना बनाएगी, क्योंकि वो आलमी पैमाने पर 1.2 ट्रिलियन डॉलर की तजारती नुकसान को कम करने की कोशिश कर रही है। व्हाइट हाउस के तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने कहा है कि सदर ट्रंप के ऐलान के फौरन बाद जवाबी इकदाम के तौर पर महसूलात का निजाम नाफिजुल अमल हो जाएगा, जबकि ऑटो दरामदात पर 25% महसूल का निफाज कल से होगा। भारत ने चिली को वेव्स 2025 में मदु किया है, जो मुंबई में 1 से 4 मई तक मुनाकिद किया जाएगा। इत्तलात और नशरियात के वजीर मुमलिकत डॉक्टर एल मुरुगन ने कल नई दिल्ली में चिली के सकाफत फन और विरासत की वजीर कैरोलिना एरेडोंडो से मुलाकात की थी। डॉक्टर मुरुगन ने उन्हें वेव 2025 में शरीक होने की दावत दी और मोहतरमा एरेडोंडो को एक पेंटिंग बतौर तोहफा भी पेश की, जिसमें भारतीय मुजस्मों को पेश किया गया है। आज वजीर नित्यानंद राय ने लोकसभा में बताया के मरकज ने जम्मू कश्मीर में 3 नए फौजदारी कवानीन के मुकम्मल निफाज को यकीनी बनाने के लिए कमेटियां तश्कील दी हैं। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी के तहत स्टीयरिंग कमेटी और DGP के तहत एक खुद मुख्तार कमेटी तश्कील दी गई, जो पूरे अमल की निगरानी करेगी। तरबियती प्रोग्राम जारी है। अमरीका ने चीन पर इल्जाम लगाया है कि उसने ताइवान को हदफ बनाकर दिफा और हमले की एक मशक करते हुए दूसरे दिन भी मिलिट्री ड्रिल करके खित्ते की सलामती को खतरे में डाला है। अमरीका की वजारत खारजा ने कहा है कि वो चीन के धमकी भरे हरबों और अदम इस्तेहकाम के रवैयों के पेश नजर ताइवान और दीगर इत्तेहादियों और शराकत दारों के तय पुरअज़्म है। भारतीय बहरिया ने आज 6 मेगावाट मीडियम स्पीड मरीन डीजल इंजन के डिजाइन और तरक्की के लिए मेक वन कैटेगरी के तहत एक प्रोजेक्ट की मंजूरी के हुक्मनामे पर दस्तखत किए। यह मुआहदा नई दिल्ली में किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स लिमिटेड के साथ किया गया। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने अगले 7 दिनों के दौरान गुजरात के स्वराष्ट्र और कच्छ में और मगरबी राजस्थान में इस माह की 5 से 8 तारीख तक कहीं कहीं शदीद गर्मी का कवी इम्कान जाहिर किया है। भारतीय मुक्केबाज जादूमणि सिंह ब्राजील में फॉस डो इगाशुआस के मकाम पर मुक्केबाजी के आलमी कप में मर्दों के 50 किलोग्राम जुमरे के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में एक सख्त मुकाबले में इंग्लैंड के मुक्केबाज एलिस ट्रॉब्रिज को 3-2 से शिकस्त दी। सेमीफाइनल में जादूमणि का मुकाबला उज्बेकिस्तान के एसलबेक जलीलोव से होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल 2025 पर बहस जारी है। ये बिल वक्फ इमलाक के इंतजामों इंसराम में शफाफियत लाने, विरासती मकामात के तहफ्फुज और समाजी फलाह बहबूद को फरोग देने के लिए है। सरकार का कहना है कि बिल का मकसद वक्फ बोर्ड को मजीद शमूलियत वाला बनाना है, जिसमें मुसलमानों के मुख्तलिफ तबकों और खवातीन की नुमाइंदगी हो। अपोजिशन ने इसे गुमराह करने वाला बिल करार दिया है। پارلیمنٹ نے امیگریشن قانون کو بہتر کرنے اور بھارت میں غیر ملکیوں کے داخلے اور ان کے قیام کو منضبط کرنے سے متعلق بل کو پاس کر دیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل سے تھائی لینڈ اور سری لنکا کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ وہ بینکاک میں بمسٹیک سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔